ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बादरायणी उवाच, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छिरन्तु मनश्चक्रे योगमायानुपाश्रितः तदो दुराजः ककुभाकरैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमहि। सर्चर्षणीनाम् उदगात्मृज कैसे हैं उद्गात सचर्षणीनामुदगाच्छुतो मृजन् प्रियः प्रियायाव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभम् नवकुमकुमारुणम् वनम् च तत्कोमलगोभिरञ्जितम् जगौ कलम् वामदृशाम् मनोहरम् निशम्य गीतम् तदनाङ्गवर्धनम् व्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः कृष्ण नाचने की लीला करेंगे, इसीलिए गाने वाले को बहुत छूट रहे हैं पद याद कर लेने चाहिए और एक बार प्रमाणित करना चाहिए कौन सा पद गाना है। जितने भी भक्त गाना चाहें किसी भी भाषा में उनके लिए छूट रहेगी, बीच बीच में अवसर देंगे क्योंकि गाने और नाचने की लीला है। तो चुपचाप केवल फिलॉसफी कहा जाए तो ठीक नहीं है। ब्रजविलास प्रभु आपके लिए भी छूट है, कभी तैयार होकर के समय दिया जाएगा, गाइएगा सबको। हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ श्रीमद् भागवतम कथा कहने का सुयोग मिला और बद्रमिश्र प्रभु का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हम प्रेम से यहाँ बुलाया और आप सबका दर्शन हुआ। हरिद्वार में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आप सब पधारे, इसके लिए हम इस गोलोक धाम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। गंगा मैया की कृपा से आपका उद्देश्य पूरा हो, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़े, यही कामना है। श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में तीन केंद्र स्थापित किया मुख्य रूप से बड़ा बड़ा, इसके साथ तो और भी किए लेकिन तीन मुख्य हैं, श्री मायापुर धाम में और वृंदावन धाम में तथा बंबई में। बंबई में उन्होंने जिस श्रीविग्रह का नाम दिया उसका नाम है रास बिहारी, श्री राधा रानी के साथ होने से राधा रास बिहारी कर, तो उसी रास बिहारी जी की कथा यहां पर होगी। जो रास करते हैं, रास बिहार में रहते हैं, उनको रास बिहारी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये रास लीला के पांच अध्याय श्रीमद् भागवत के पांच प्राण माने गए हैं, तो सर्वसार सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम में और इसमें पांच अध्याय सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य, सुंदर स्वर, सुगंध और सुंदर रूप सौंदर्य आदि इस लीला में पूर्ण आस्वादन किया गया है। श्री गोपी जनों ने किया है और भगवान ने भी उनके सौंदर्य आदि का खुलकर आस्वादन किया है। बहुत ऊंची लीला है, तो इसे बहुत ही मनोयोग के साथ पवित्र भाव से बहुत दुर्लभ वस्तु समझ करके सेवन करना चाहिए और शांति से श्रवण करने की चेष्टा करनी चाहिए। यद्यपि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इस लीला का वर्णन कर सकूं, इसके लिए तो बहुत पवित्र मन चाहिए, पवित्र देह, पवित्र बुद्धि, बहुत पवित्र शब्द, कृष्ण पे प्रेम से परिपूर्ण। वास्तव में इस लीला को कहने और सुनने का अधिकार तो परमहंसों को है, परंतु फिर भी एक लोभवश कि अपना जीवन भी बीत रहा है तो कब इसका आस्वादन करेंगे, तो इसलिए इसको कहने का साहस किया जा रहा है। परंतु एक बात का बहुत बड़ा भरोसा है कि यहां जितने भी लोग आए हैं, भक्तजन आए हैं, वे एक साधक हैं, अपने स्थान पे सोलह माला जप करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं। अतः इन साधकों के बीच, भक्तों के बीच में भगवान की लीला कहने में कोई हिचक नहीं है, उल्टे आनंद होता है। अतः उसी आनंद के आस्वादन के लिए मैं ये कथा कहने जा रहा हूं। मुझे भी एक लोभ रहता है कि भक्तों के बीच बैठ करके उनकी भक्तिमय भावना से उत्प्रोत वातावरण में भगवान कृष्ण का स्मरण किया जाए। इसलिए यदि हमारे शब्दों में भगवान के लीला में कोई व्याघात हो या रसाभास हो या सिद्धांत विरुद्ध हो तो वैष्णव लोग क्षमा करेंगे, सुधार करके ग्रहण करेंगे। ऐसे में प्रयास करूंगा कि अपने आचार्यों के बातों को जहां तक मेरी मति ने ग्रहण किया है, जहां तक याद है, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। हमारा इसमें कुछ है नहीं, सब पूर्वजों की ही कमाई है। जैसे कोई बेटा निकम्मा हो जाए, धन न कमाए, लेकिन उसके बाप दादा इतने धनी हैं कि उसी से वो जीता है खाता है, तो इसी तरह से हम लोगों के जो आचार्य जहां जैसे सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद और भी, उन्होंने इतना दिया है कि वह बहुत ही पर्याप्त है और जुग जुग तक वो काम आता रहेगा। तो उन्हीं के शब्दों को हिंदी भाषा में थोड़ा कहने का प्रयास किया जाएगा। तो पहले हम लोग श्लोक की आवृत्ति किए तो उसका अर्थ कर लू। श्री बादरायणी रुवाच, श्री बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान अपि सदा नित्य आनंद में रहने वाले समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, भगवान भी तारात्रि उन रात्रियों को, अनिर्वचनीय महिमा वाली रात्रियों को, शरदोत् फुल्ल मल्लिका, शरदकालीन रात्रियों को, जिनमें मालती के पुष्प बहुत खिले हुए थे और अन्य भी अनेक पुष्प खिले हुए थे, विच्छया देखकर रंतु रमण करने की, विहार करने की, मनश्चक्रे संकल्प किया, योग माया अचिंत अनंत अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति योग माया को उपाश्रितः खूब अच्छी तरह से प्रकटीकृत किए, प्रकट किए। तो इस रास लीला के बिल्कुल प्रारंभ में भगवान वेदव्यास देव कहते हैं, तो यहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री बादरायणी रुवाच, श्री बादरायणी ने कहा। बादरायण का अर्थ है बदर अयन, बदर का अर्थ है बेर फल, बेर के पेड़। सभी लोग जानते बेर को ही बदर कहते हैं संस्कृत में, और बदर का समूह जिसका अयन हो, अर्थात बदर के वृक्षों के आश्रय में जो रहते थे भगवान वेदव्यास देव, उनको बादरायण कहते हैं। और बदर के पेड़ बहुत थे उस समय वहां जिस क्षेत्र में वेदव्यास देव रहते थे, तो उसको बद्रिकाश्रम कहते हैं, बद्रिकाश्रम। ये बदर के वृक्ष के कारण ही उसका नाम ये हुआ। तो वहां पर भगवान वेदव्यास देव ने तप किया, ये अन्य पुराण में कथा है, बहुत तप किया। क्यों तप किया? भगवान वेदव्यास देव की ये अभिलाषा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो श्रीमद् भागवतम ग्रहण करे, क्योंकि उनके शिष्यों में किसी में योग्यता नहीं थी कि वे श्रीमद् भागवतम ग्रहण करें। उनके अनेक शिष्य थे, जैसे पायल, वैशंपायन और भी बहुत से शिष्य, जैमिनी, लेकिन भगवान वेदव्यास देव श्रीमद् भागवतम रच चुके थे, रखे थे और सोचते थे पढ़ाने अपने शिष्यों को, परंतु कोई कोई उनके शिष्य कर्मनिष्ठ थे, किन्हीं की ज्ञान में निष्ठा थी, और भी कई तरह से उलझे हुए थे। पूर्ण रूप से सब प्रकार से निवृत्त चित्त वाले और भगवान के प्रेम में मग्न कोई ऐसा उनको शिष्य नहीं मिला, इसलिए श्रीमद् भागवतम रच करके रखे थे और सोचते थे कि किसको पढ़ाए। इसके लिए उन्होंने भगवान कृष्ण की तपस्या किया, वे बद्रिकाश्रम में तप किए, उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए सुखदेव गोस्वामी। यद्यपि प्रारंभ में वो भी घर छोड़कर चल दिए, लेकिन श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों को सुन करके वे लौटे और स्वयं ही आग्रह करके अपने पिता से पढ़े। तो श्रील व्यास देव जैसे जीवन मुक्त महापुरुष, भगवान का अवतार, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कमाई श्रीमद् भागवतम को देना चाहते थे, पर उन्हें कोई नहीं मिला, तो भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया तपस्या द्वारा। भगवान के वरदान से, आशीर्वाद से उन्हें सुखदेव गोस्वामी मिले। तो सुखदेव गोस्वामी में स्वभावतः ही पैतृक गुण था, भगवान वेदव्यास जैसा सर्वज्ञत्व और कृष्ण प्रेम से परिपूरित हृदय, ये स्वाभाविक था। और श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद तो वे और अधिक आविष्ट हो गए भगवान कृष्ण में पूर्णतः, और जीवन का उनका कोई काम नहीं था, केवल कृष्ण लीला के चिंतन में डूबे रहते थे। और अवसर पाकर एक बार उन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, इस तरह से उनका जीवन पूर्णतः संसारी कार्यों से निवृत्त था, केवल भगवान श्रीकृष्ण की लीला में वे रहते थे। इसी भाव का स्मरण करके शुद्ध गोस्वामी यहां कह रहे हैं श्री बादरायणी रुवाच, बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा। ये बादरायणी शब्द द्वारा अपने आप स्मरण हो जाता है, अच्छा भगवान व्यास देव ने तपस्या किया और तपस्या करके पुत्र प्राप्त किया श्रीमद् भागवतम ग्रहण कराने के लिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी की एक योग्यता भी यहां कही जा रही है, जो इस प्रकार से वेदव्यास देव के तपस्या लब्ध पुत्र हैं, जिनमें सर्वज्ञता है, भगवत प्रेम लबालब भरा हुआ है, तो वे बोल रहे हैं। ऐसा वक्ता जिस विषय को अपनी इच्छा से ही व्यक्त कर रहा है, इसका अर्थ है कि यह प्रसंग बहुत उत्कृष्ट है। बाह्य दृष्टि से देखने पर लगेगा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी एक कृष्ण नामक लड़के का अन्य लड़कियों के साथ बिहार वर्णन करने जा रहे हैं। तो संसारी काल में तो इसको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि ये सुखदेव गोस्वामी को क्या हुआ है, कि मरणासन्न परीक्षित को ये युवतियों के साथ एक युवक का नाचना क्यों वर्णन करने जा रहे हैं, क्या बात। और सारे ऋषि मुनि वहां पर, विप्रर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब जुटे हुए थे, सब टॉप क्लास की व्यक्ति थे, विविध लोकों से आए हुए थे, जितना भी मनुष्य समाज में कल्पना कर सकते हैं सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, सदाचारी और दीर्घजीवी जो है वे सब उसमें जुटे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जुटे हुए थे, यहां तक नारद जी तक उस सभा में बैठे थे और भगवान वेदव्यास देव स्वयं थे जो श्रीमद् भागवतम की रचना किए हैं वे सुन रहे थे, श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इसलिए इस समझ में आ रहा है कि यह विषय अति उत्कृष्ट है, अति महान है, सादृश्य होने से, एक समानता होने से कोई वस्तु एक समान नहीं हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक मिश्री का ढोका रखा जाए और फिटकरी रखा जाए साथ में, तो देखने में दोनों एक जैसा लगेगा, है ना, इसको वस्तु सादृश्य कहते हैं। परंतु गुण धर्म में बिल्कुल अंतर होता है, कोई मिश्री के बदले फिटकरी खा ले तो क्या रियलाइज करेगा, रियलाइजेशन होगा नहीं, तो बहुत बिटर है, तीक्ष्ण है, थू थू करेगा, जो खाया है वो भी उल्टी कर सकता है, इस तरह से उसका स्वभाव। लेकिन देखने में तो मिश्री जैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लगेगा यानी भगवान श्री कृष्ण जो सबके आराध्य हैं, जोगेश्वरेश्वर हैं, वे ज्योति स्त्रियों के साथ इस तरह नाचे वृंदावन में, उनके साथ गावे, क्या हो गया भगवान को। और भगवान को तो जो कुछ भी हुआ हुआ है, ये सुखदेव गोस्वामी परमहंस चूड़ामणि को क्या हुआ, क्या यही कहने सुनने का विषय है, ये सोचने की बात। लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यदि पहले ये शब्द सुने कि इसको वक्ता कौन है, श्रील सुखदेव गोस्वामी, निश्चित ही वक्ता को देख करके ही अनुमान कर लिया जाएगा कि यह विषय बहुत उत्कृष्ट है। पूरा श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी कोई थर्ड क्लास की चीज कहने के लिए नहीं बैठे हैं। और सुनने वाले कौन हैं, आसन्न मृत्यु महाराज परीक्षित, जिनका शरीर छूटने वाला है और अब केवल 3 दिन के बाद शरीर छूटने वाला है, 4 दिन तो कथा हो चुकी थी, 3 दिन जीवित रहने वाले थे, और क्या वे कभी भी मंडेन संसारिक बात सुन सकते थे। गर्भ के प्रारंभ से ही भगवान श्रीकृष्ण का वो दर्शन किए थे, भगवान ने गर्भ में जिसकी रक्षा किया था, वह महान व्यक्ति जो पांडवों का वंशधर है, महान वैष्णव, क्या वो ये तुच्छ लड़के और लड़की के बिहार की बात सुनेगा कभी। आजकल के लोग ये बातों पर विचार नहीं करते हैं, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, बस ये कह देते हैं ये देख कृष्ण तो ये सब स्त्रियों के साथ नाच किए, ये किए, वो किए, तो विचार करना चाहिए। इसीलिए शुद्ध गोस्वामी यहां कहते हैं श्री बादरायणी रुवाच, बादरायणी बोले। कौन व्यक्ति बोल रहा है? जिसको तपस्या करके भगवान वेदव्यास देव ने बादरायण में उत्पन्न किया था श्रीमद् भागवतम ग्रहण कराने के लिए, वह परमहंस चूड़ामणि महान योग्य व्यक्ति, भगवान का बहुत प्रिय और भगवत प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी के मन में रासलीला के प्रति कितना आदर का भाव है, कितना महान समझ रहे हैं, ये उनकी उक्तियों से बाद में प्रकट होगा। भक्तों को उन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं साक्षात मन्मथ मन्मथ योग माया मुपाश्रित आत्मनोरुद्ध सौरत, तो ये सब शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा रासलीला बिल्कुल अप्राकृत दिव्य गोलोक वृंदावन वैकुंठ की चीज है। इस प्राकृत जगत की वस्तुओं के साथ या क्रियाओं के साथ उसका साम्य देखना वास्तव में अपने अधः पतन का कारण होगा। वह अपने कालुष्य को, अपने मन के कसाय को भगवान की लीला में नहीं देखना चाहिए, यह बहुत बड़ी भूल होती है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षवन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण ने एक समय शरदकालीन रात्रियों को देखा जिनमें मालती के पुष्प बहुत खिले हुए थे। उन रात्रियों को देखकर भगवान अपनी अचिंत योग शक्ति को प्रकट किए और रंतुम मनश्चक्रे, उन्होंने विहार करने की इच्छा किया, खेलने की इच्छा किया। ये शब्द हैं, अब इन शब्दों पर आचार्यों के मुख से निकले हुए उक्तियों के अनुसार हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि मनश्चक्रे किमर्थम रंतुम, भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। क्यों इच्छा हो गई भगवान को? क्योंकि उन्होंने सर्वोत्फुल्ल मल्लिका ता रात्रि वृक्ष, मालती पुष्पों से खिली हुई उन रात्रियों को देखा भगवान ने, तो उन्हें गोप रमणियों के साथ विहार करने की इच्छा हो गई, मनश्चक्र इच्छा उत्पन्न हो गई। यह मनश्चक्र का अर्थ उन्होंने संकल्प किया, इच्छा तो बहुत पहले से है भगवान की, लेकिन अब संकल्प कर लिए। ता रात्रि भगवान अपि, श्री कृष्ण अपि नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान कह रहे हैं। भगवान का क्या अर्थ है? इसे प्राय स्थान में रहने वाले भक्त बारंबार सुने हैं। भग का अर्थ होता है छह ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से जस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च स्वर्णम भग इतिंगना। विष्णु पुराण में ये कहा गया है, श्री पराशर जी कहते हैं कि इन छह के समूह को भग कहते हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर, समग्र बल, विद्या, वैराग्य, जस, जो पूर्ण मात्रा में है, पूर्ण समग्र, तो इनको भग कहते हैं। और इस भग से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं, वे कहते इति इंगना, इस तरह से ये संकेत किया गया, बताया गया है, स्मरण किया गया है। तो यहां भगवान का अर्थ है कि जो सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और समस्त वेदों के जो प्रतिपाद्य है, जिनमें समस्त ज्ञान है, समस्त वैराग्य है, तो समस्त वैराग्य के द्वारा ये समझना चाहिए कि भगवान कभी भी किसी भी भोग की कभी इच्छा कर ही नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। जैसे भगवान सूर्य क्या कभी रास्ता भटक करके किसी मोमबत्ती की आशा करेंगे कि यह हमको लाइट दे? क्या कभी सोचा जा सकता है इस बात को? जो अनंत अनंत प्रकाश पुंज का स्रोत है, बिखेर रहा है, जिसकी कृपा से कोटि कोटि जीव देखते हैं, आलोक ही आलोक है जिसमें, वह व्यक्ति क्या दूसरे आलोक की दूसरे वस्तुओं की चिंता करेगा कि हमको प्रकाश दिया जाए। जो स्वयं आनंद का घनीभूत स्वरूप है, सारा आनंद जिससे निकलता है, और जो वैराग्य का स्वरूप है बिल्कुल, क्या कभी उसके मन में इच्छा हो सकती है कि मैं किसी स्त्री को टच करूं, उसको देखूं, उसके साथ नाचूं, ये करूं? कभी संभव है? नहीं है संभव। ये भगवान शब्द बता रहा है। परंतु ऐसे आनंद से परिपूर्ण जिनमें भगवान भी इच्छा किए, रंतु मनुष्य, उन्होंने रमण करने की, विहार करने की इच्छा किया, संकल्प किया। अपी शब्द इस बात को प्रकट करे, भगवान अपने स्वरूप में है, छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, संसार के दोष से बिल्कुल विवर्जित है, काम क्रोध लोभ आदि की तो कल्पना ही नहीं है भगवान में, फिर भी भगवान ने इच्छा किया। इसका अर्थ है भगवान अपी रंतु मनश्चक्र, गोपी जन तो पहले से ही चाहते थे कि हमें प्रियतम श्याम सुंदर के साथ वृंदावन में रहने को मिले, ये कब तक हम घर का काम करती रहेंगी। उनका मन वास्तव में फ्री था, वे चाहती थी सर्वस्व त्याग करके भगवान कृष्ण के साथ होना, और यही किसी भी जीव के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जीव कृष्ण का नित्य दास है, और वो तो नित्य प्रियाए ही हैं भगवान की। तो केवल भिन्न स्थान में भिन्न जगह पर भगवान ने जन्म दिया था, और अपनी नित्य प्रियाओं के साथ वे चाहते थे परकिया भाव का आस्वादन करना। केवल इतना ही बात है, गोपियां वास्तव में भगवान की परकिया नहीं है, न स्वकिया है। ये स्वकिया और परकिया दो शब्द प्राकृत हैं, प्रकृति के राज में यहां लागू किए जाते हैं। भगवान की लीला में भगवान के साथ जो जीवों का संबंध है, वहां पर स्वकिया परकिया का कोई प्रश्न ही नहीं। वो नित्य युक्त है श्री कृष्ण से, पर भाव परकिया का है। भाव में और वस्तु स्थिति में बहुत अंतर होता है। भाव अलग वस्तु है, वस्तु अलग होती है। तो गोपीजन परकिया नहीं है, लेकिन परकिया भाव है। वे चाहती थी श्याम सुंदर के साथ हो जाना सदा के लिए, वे घर में रहना नहीं चाहती थी। एक एक क्षण उनके लिए कल्प जैसा बीतता था, उनका मन तो लगा ही था। उस थोड़ा भी अवसर मिलने पर शरीर से भी वृंदावन में चले जाती थी और प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा करती थी, उनके लिए फूल गुथना, उनका चरण दबाना, उन्हें पंखा झरना। वे घर में इसी चिंता से मरती रहती थी कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के पैर में पत्थर लग रहा होगा, घास लग रहा होगा, हाय हाय, हम इतनी दासियों के जीवित रहते हुए भी श्याम सुंदर को वृंदावन में गोचारण करते समय सब दुख झेलना पड़ता है। वो चाहती थी उनकी सेवा करना, क्योंकि निज सुख दुख गोपी ना करे विचार। गोपियों के मन में कभी स्वप्न में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हम कैसे रहेंगे, हमारा सुख हमारा दुख, ये तो इस जगत के लोग सोचा करते हैं। गोपियों का स्वरूप ऐसा था, स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। तो केवल श्याम सुंदर के प्रीति का विधान करना, व्यवस्था करना, यही उनका जीवन है। ये चाहती थी कि हम सब कुछ छोड़कर श्याम सुंदर के साथ हो जाएं, उन्हें हम सुख दें सब तरह से। इसको रंतुम कहते हैं, रमण करना। तो गोप सुंदरियां तो पहले से ही चाहती थी, अब आज भगवान भी रंतु मनस्चक्रिया, अब भगवान को भी इच्छा हो गई। अब तक तो भगवान लोक लज्जा से या जैसे भी या शरीर छोटा होने से धैर्य रखे थे, अपनी नित्य प्रियाओं के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन समाज बाधक था। तो भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे का यही भाव है कि अब भगवान भी संकल्प कर लिए। पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की लीला है, इसलिए रासलीला के प्रारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। किसी जीव का यह कर्म नहीं है, यह भगवान की लीला है, भगवान का कर्म है। हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों भगवान की इच्छा हुई? सर्दोत्फुल मल्लिका ताह रात्रि वीक्ष, भगवान ने उन रात्रियों को देखा वास्तव में एक रात्रि को देखा, लेकिन भगवान ने जब रास विहार किया तो उस रास विहार में भगवान ने अनंत अनंत रात्रियों को सम्मिलित कर लिया था। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी संकेत भी किए, ब्रह्म रात्रि समाप्त होने पर गोपियां अपने घर लौटी थी, यह वर्णन करते। ब्रह्म रात्रि का अर्थ ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, लेकिन वास्तव में टीका के अनुसार पता चलता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण देखने में छोटे हैं पर उनके भीतर सारा ब्रह्मांड है, वास्तव में है। मां यशोदा ने देखा, अर्जुन ने देखा, कई लोगों ने देखा है भगवान के उस श्री विग्रह में सारा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ। इसी तरह रासलीला के उस एक रात्रि के भीतर ही भगवान ने अनंत अनंत रात्रियों को सम्मिलित कर लिया। अतः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ताह रात्रि, उन रात्रियों को देखकर भगवान को अपनी प्रियाओं के साथ विहार करने की इच्छा हुई, उन्होंने संकल्प किया। और क्या स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की, योग मायाम उपाश्रित, योग माया। योग का अर्थ है योग स्वरूप है, स्वरूप को ही योग कहा गया है संस्कृत में, और माया का अर्थ शक्ति, स्वरूप शक्ति इसका अर्थ है। स्वरूप शक्ति भगवान की चित शक्ति है, जिसे स्वरूप शक्ति कहते हैं, और उनकी एक बाहरी शक्ति है जिसको बहिरंगा कहते ही हैं, जिसका भगवान के स्वभाव से मेल नहीं है। भगवान चिन्मय है, दिव्य है, ज्ञानमय है, लेकिन उनकी एक ऐसी शक्ति है जो चिन्मय नहीं है, जड़ है, जड़ है। उस शक्ति को बहिरंगा शक्ति कहते हैं। बहिरंगा शक्ति सारे बद्ध जीवों को कंट्रोल कर रही है, और उनके मन में कोई भी इच्छा होती है, कुछ भी विकार होता है, तो वास्तव में बहिरंगा शक्ति प्रेरित करती है। बहिरंगा शक्ति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण मिल करके सारे जीव को कंट्रोल करते हैं, तो उनके भीतर अगर कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो रही है तो बहिरंगा शक्ति का दिया हुआ है, बहिरंगा शक्ति की चपेट में जीव है। लेकिन भगवान अपने स्वरूप शक्ति में है, वो किसी के अधीन नहीं है। योग माया का यहां यह अर्थ है। वास्तव में भगवान की तीन शक्तियां हैं, स्वरूप चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो भगवान को यहां सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं योग माया में उपाश्रित। ऐसे सुनने में सब लग रहा है जैसे भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, आश्रय नहीं लिया, योग माया स्वयं श्री कृष्ण के आश्रित है। जैसे यह कहा जाए कि सूर्य ने अपने किरणों का आश्रय लिया, तो इसका अर्थ यही है कि किरणों को प्रकट किया, इतना ही अर्थ है इसका, न कि सूर्य किरणों का आश्रय लिया। योग माया में उपाश्रित भगवान ने जो अचिंत वैभव है, जो स्वरूप शक्ति है, ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान घन हैं, सब कुछ नित्य हैं और सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, उन ऐश्वर्यों को भगवान ने प्रकट किया, यह अर्थ है। तो योग माया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जीव है महामाया के द्वारा, बहिरंगा शक्ति के द्वारा चालित हो रहे हैं, और उनकी जो भी क्रियाएं हो रही हैं महामाया के अधीन, उनका विचार और उनकी क्रियाएं और उनका शरीर, सब कुछ बहिरंगा शक्ति के द्वारा दिया हुआ है। यह जड़ शरीर जो नक्ष सिक्तक स्थूल है, इसके भीतर जीव बहुत छोटा है, तो यह जड़ शरीर भी माया देती है, और शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले रूप, रस, गंध, शब्द आदि भी सब माया दे रही है। तो इस तरह से माया का कठपुतला, माया के अधीन रहने वाला जीव अप्राकृत मायातीत भगवान के विहार को कैसे समझ पाएगा। पर श्री सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं योग माया में उपाश्रित, भगवान अपनी योग शक्ति को प्रकट किए। ये सब शब्द ऐसे हैं जो रासलीला की दिव्यता को, अलौकिकता को अपने आप सूचित कर देते हैं। यदि कोई भागवत पढ़ने वाला है, समझने वाला है, समझ जाएगा तुरंत, और नहीं समझने वाले के लिए तो अब ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाए तो समझाना कठिन। एक श्लोक में कहा गया है कि रामचरितमानस में कहा गया है, रावण को समझाया जा रहा था, बस सीता जी को लौटा दो तुम कुशल से जीवित रहोगे, राज्य करो लंका का, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो उसके विषय में कहा गया है कि मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिल ही बिरम ची समा फूल फरई न बेत जदपि सुधा बरसई जलत। यदि मेघ है अमृत भी बरसाने लगे फिर भी बेत बांस जो है न फूलेगा न फलेगा, उसको स्वभाव से फल लगता ही नहीं है, फल लगता नहीं है, फूल भी नहीं लगता है, तो अमृत भी बरसाया जाए तो बांस में बेत में फूल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा। ऐसे ही मूर्ख हृदय में चेत, जो मूर्ख है उसके हृदय में ज्ञान नहीं हो सकता है। जौ गुरु मिला ही बिरह समा, बिल्कुल परंपरा के आदि गुरु ब्रह्मा जी भी चार मुख से पढ़ावे फिर भी नहीं पढ़ता। जिन दुष्टों ने मन में बांध लिया भगवान कृष्ण के प्रति, जिनके मन में दुर्भाव है कि ये कामी है ये है, उन दुष्टों को कौन समझा सकते, वो अपने नरक का द्वार अपने हाथ से खोल रहे हैं, जो नरक में जाना ही। विचार करना चाहिए भगवान क्या है, तब उनकी लीलाओं पर विचार किया जा सकता है। श्री कृष्ण है क्या वास्तव में, और क्या बात है कि श्री कृष्ण पर सारे महापुरुष लट्टू हैं, श्रीपद शंकराचार्य चाहे मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य, विश्व के जितने भी बड़े बड़े लोग हुए सब श्री कृष्ण पर मुग्ध हैं। क्या बात, क्या कोई गोप कुमार है वृंदावन का लंपट जो गोपियों के साथ नाच रहा है, केवल इतना ही है, श्री कृष्ण है क्या। जिनके विषय में गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी ये सब शब्द दे रहे हैं, योग माया अनुपाश्रित, जिन्होंने अपनी अचिंत्य स्वरूप शक्ति को प्रकट किया है, वे भगवान रमण करने की इच्छा की, तो उनकी इच्छा क्या सामान्य जीवन जैसी हो सकती है। भगवान की इच्छा भी दिव्य है, अप्राकृत है, और वास्तव में गोपियां श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं है, वे अपने साथ ही रमण की इच्छा किए, ये अर्थ है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला वर्णन प्रसंग में कहा है, जैसे छोटा सा बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, कहीं पर है और प्रतिबिंब पड़ रहा है, चाहे जल में या शीशे में दर्पण में, और उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, अपनी परछाई को देख करके हंस रहा है, चुना चाहता है, चुनना चाहता है, तो वास्तव में वह अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप शक्तियों के साथ खेल रहे हैं, खेलेंगे, विहार करेंगे, कोई ऐसा नहीं किसी दूसरी स्त्री से वो मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, कर रहे हैं, अपना ही स्वरूप बिल्कुल आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभीर ये निज रूप तया कला भी, उस श्रीकृष्ण की ही बिल्कुल स्वरूप है। श्रीकृष्ण किसी स्त्री में आसक्त हो ही नहीं सकते हैं, वो अपने में ही आसक्त हो सकते हैं, इसलिए उनको आत्मा राम कहते हैं, आत्मा तो राधिका तस्य, श्री राधा रानी उनकी आत्मा है, अपने में ही रमण कर रहे हैं, अपने में ही वे आनंदित हैं। तो श्रीकृष्ण के इस अद्भुत अलौकिक स्वरूप को और उनके प्रभाव को और उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तब व्यक्ति कुछ आनंद प्राप्त कर सकता है इस जीवन में। भगवान का जो सुख है, आनंद है, वह उसे प्राप्त होता है। भगवान के द्वारा मिलने वाले जीव को जितने भी आनंद हैं, वो सारे आनंद भगवान की लीलाओं में रखे गए हैं। इसलिए देखा गया है कि जो महापुरुष भगवान की लीलाओं में आसक्त होते हैं, उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती, पूर्ण रहते हैं, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री नारद जी, ये पूर्ण हैं, बिल्कुल भगवान की लीलाओं का अनुभव करके। योग माया उपास्यता यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान ने अपनी स्वरूप शक्ति में ही है, अपनी स्वरूप शक्ति को प्रकट किए हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि भगवान अपने स्वरूप से च्युत हो जाए, कुछ देर के लिए उनको अज्ञान घेर ले और कोई भौतिक वस्तु की उनको कामना हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रभु ने अपनी नित्य प्रियाओं के साथ वृंदावन में विहार करने की इच्छा किया, संकल्प किया, मनस चक्र। और यहां पर बताया गया कि ये रात शरदकालीन रात्रियां भगवान के भाव में उद्दीपन का काम कर रहे थे। उद्दीपन, किसी के प्रति जो कोई भाव होता है, खासकर भगवान के प्रति किसी का भाव है या भगवान का अपने भक्तों के प्रति भाव है, तो वह भाव है जब किसी तरह से थोड़ा विकसित होता है तो उसको विभाव कहा जाता है। विभाव, विभाव के दो भेद बताते हैं रूप गोस्वामी पाद, एक उद्दीपन विभाव और दूसरा है आलंबन विभाव। उद्दीपन, जिस क्रिया को अपने प्रियतम के चलना या बांसुरी सुनाना, नुपुर की आवाज, हंसना, ये सब उद्दीपन का काम करते हैं उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए। और आलंबन भी दो प्रकार का होता है। आलंबन का अर्थ होता है जहां पर भाव टिका हुआ है और जिसके लिए भाव हो रहा है, तो जिसके लिए भाव होता है, जिसके प्रति प्रेम होता है, उसको विषयालंबन कहते हैं। जैसे गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति है तो भगवान विषयालंबन हुए, लेकिन भगवान का प्रेम गोपीजनों के प्रति है तो उस समय गोपियां ही विषयालंबन हो जाती हैं, भगवान आश्रयालंबन होते हैं। परंतु सामान्य रीति से वास्तव में भगवान श्रीकृष्ण विषयालंबन है। इसको ऐसे समझा जाता है जैसे कोई लता है तो लता के दो आलंबन हैं, एक तो ग्राउंड जहां पर वो लता उगी हुई है, उसको आल बाल कहते हैं संस्कृत में, आल बाल थाला, जहां पर लता उगी हुई है इसको आश्रय आलंबन कहते हैं। और वो लता बढ़ती है, कहीं टिकती है किसी के प्रति, भगवान कृष्ण को ही माना गया ऐसा, तो उस लता में जो फल लगेगा दिव्य प्रेम में, उसके आस्वादन भगवान श्री कृष्ण, उसका आस्वादन भगवान कृष्ण करते हैं, तो उनको विषयालंबन करते हैं और गोपियां आश्रयालंबन हैं। यहां पर दिखा रहे सुखदेव गोस्वामी कि शरद काल की परम शोभा मई अनिर्वचनीय रात्रियों को देखकर भगवान के मन में उद्दीपन हो रहा है, अपनी प्रियाओं के सौंदर्य, सुकुमारता, उनके सुंदर स्वर और उनकी विविध सेवाओं के आस्वादन की इच्छा हो रही है, उन रात्रियों को देखकर स्मरण होने लगा। संकल्प, मनस चक्र का अर्थ केवल स्मरण ही नहीं हुआ, संकल्प कर लिया कि मुझे विहार करना है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस तरह से रासलीला के सामग्रियों का वर्णन कर रहे हैं। रासलीला रात्रि में हुई थी, तो रात्रियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, शरदकालीन रात्रियां थी और उनमें मल्लिका के, मालती के पुष्प खिले हुए थे, अथवा शरदकालीन मालती के पुष्प खिले हुए थे, परंतु यह अर्थ समीचीन नहीं होगा। कारण कि शरद ऋतु में मालती के पुष्प नहीं खिलते हैं, पर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल में भी मालती के पुष्प खिल गए थे, तो अन्य पुष्पों की तो बात ही क्या है, कितना खिले थे। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, मालती के पुष्प खिले हुए थे उन रात्रियों में। इसके द्वारा एक उपलक्षण से वर्णन कर रहे हैं कि और भी अनेक प्रकार के पुष्पों से भर गया वृंदावन, सब प्रकार के पुष्प खिल गए। जो दिन में खिलते हैं वे भी रात्रि में खिल गए, जैसे कमल आदि, अनेक प्रकार के फूल खिल गए, सुगंधित हवा चलने लगी, चारों ओर सुबास सुबास। और उसके अनुसार जैसे अब शरद काल में भी मालती के पुष्प खिल गए, इसका अर्थ है कि शरद काल में ही बसंत के गुण आ गए, सब कुछ आ गया। तो कोयल बोलने लगे, भौरे गुंजने लगे, सब प्रकार के पुष्प खिल गए। तो ऐसी सुंदर दिव्य रात्रियों को भगवान ने देखा, देखते ही उनके मन में ब्रज रमणियों के साथ वृंदावन में विहार करने का संकल्प हुआ, इच्छा हुई। एक एक शब्द बहुत ही विचारणीय है और जो सभा है महाराज परीक्षित की, जहां पर विचार किया जा रहा है, जहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वे सब बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के साधक थे, सिद्ध थे। वे लोग एक एक बात को तुरंत समझ रहे थे, भगवान की महिमा को समझ रहे थे। तो उस स्थिति में अब जितना वे समझ सकते थे, उस स्थिति में अपने मन को ले जाने की चेष्टा करनी चाहिए, हमेशा इस उत्कृष्ट दिव्य भाव को मन में बसाने के लिए उस स्थिति में अपने मन को ले जाना चाहिए। साधक का कर्तव्य होता है अपने को ऊंचा उठाना चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी रात्रियों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान के भाव में उद्दीपन का काम कर रही है। और वीक्ष्य का अर्थ है भगवान ने देखा, देख करके किया। तो भगवान का देखना ऐसे हम लोगों जैसे देखना नहीं है, वहां देखने का अर्थ है कि भगवान ने स्वयं ही उन रात्रियों का निर्माण किया, यह अर्थ है। वी इच्छा, इच्छण का अर्थ देखना। तो शास्त्र में तो कहा गया है स अच्छत बहुश्याम, भगवान ने देखा कि मैं बहुत हो जाऊं। भगवान का देखना और देखते ही सृष्टि हो जाना एक साथ हुआ था। स अच्छत, अक्षत का अर्थ नहीं भगवान ने इच्छा किया, अक्षत का अर्थ भगवान ने देखा और देखते ही सृष्टि हो गई। तो भगवान का यहां पर जो क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है वीक्ष, इसका अर्थ है कि भगवान ने उन दिव्य अलौकिक रात्रियों का निर्माण किया। ये प्राकृत जगत की रात्रियां या प्राकृत काल या प्राकृत देश भगवान के विहार में कारण नहीं बन सकता है। जैसे यहां पर कोई रंगमंच सजावे, रंगमंच सजाया, लाइटिंग की व्यवस्था किया, सब किया, जिसे कहीं कहीं होता है रात्रि में भी दिन जैसा कर देते हैं, और कभी डिम लाइट, कभी हरा, कभी लाल, कभी सब करते रहते हैं। पर जो कुछ भी व्यवस्था यहां की है वो प्रकृति की व्यवस्था है, और हो सकता है किसी डांसर को इच्छा हो जाए मंच देख करके कि मैं नाचूं, लेकिन भगवान को जो नाचने की और विहार करने की इच्छा हो रही है, वास्तव में भगवान के स्वरूप से प्रकट उन्हीं की योग माया के द्वारा उपस्थापित वे रात्रियां थी। कुछ भी प्राकृत नहीं था, कुछ भी मंडेन नहीं था, सब कुछ दिव्य था। इसलिए वीक्षा का अर्थ भगवान ने उन रात्रियों का निर्माण किया, उसको सजाया अपनी योग शक्ति द्वारा, और इसके बाद उन्हें इच्छा, जब इच्छा हुई तब सजाया उन्हें, इस तरह विहार करने की इच्छा की। तो वृंदावन में वो रात्रियां और इसके बाद चंद्रोदय वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो वह चंद्र भी वास्तव में प्राकृत चंद्र नहीं था, उस दिन भगवान की इच्छा से उदित तो चंद्र था, भगवान की लीला में सहायक। ऐसे इस संसार में देवता भी हैं जो पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा सजाए हुए वस्तुओं का उपभोग नहीं करते, देवताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है। उनका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, देवताओं के नाचने का, खाने का, गाने का, चलने का, जो कुछ भी है सब यहां से बिल्कुल भिन्न है, मतलब सुप्रियर है प्राकृत। जैसे उनका विमान है, तो उनका विमान पेट्रोल से नहीं चलता है, संकल्प से चलता है, कंप्यूटर से भी नहीं चलता है, संकल्प से चलता है। वो इच्छा करते हैं कि इस स्पीड से चले, यहां रुक जाए, इतना छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, वो होता रहता है। जब देवताओं के स्टैंडर्ड में और मनुष्यों के स्टैंडर्ड में इतना अंतर है, तो फिर भगवान का जो स्टैंडर्ड है वो तो सब कुछ दिव्य है, अप्राकृत है। इसीलिए साधकों का कर्तव्य है कि जब शरदकालीन रात्रि का चिंतन करें तो पहले समझ लें कि अप्राकृत स्पिरिचुअल सृष्टि है भगवान की, सब कुछ दिव्य वहां का। कोई प्राकृत नहीं है कि प्राकृत वस्तु को, प्राकृत रात्रि को और प्राकृत चंद्रोदय को देखकर भगवान के मन में विहार करने की इच्छा हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। सब कुछ अप्राकृत है। इसके बाद श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी चंद्रोदय का वर्णन करते हैं, क्योंकि रासलीला में चंद्रमा ही दीपक का काम कर रहा था, बिल्कुल दिन जैसा कूलिंग लाइट थी। तो पहले चंद्रोदय का वर्णन करते हैं। तदो दुराज ककुभ करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन संतमहि स चर्षणीनामुदगाच्छुच मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। जदा भगवान रन्तु मनश्चक्र तदा एव तस्मिन् काले एव उडुराजः उद्गात्। चंद्रमा उदित हुए, जब भगवान ने इच्छा किया विहार करने की तो उसी समय चंद्रोदय हुआ। तदा तस्मिन् एव काले, यह चंद्रमा भी रोज की तरह जो चंद्रमा उगता था वह चंद्रमा नहीं है, यह भगवान के संकल्प शक्ति से उदित हुआ चंद्रमा है जो चिन्मय है और भगवान की लीला का एक अंग है। साधारण चंद्रमा नहीं ऐसा कर सकता है। तो चंद्रमा उगा जो करे ही अपनी किरणों से पूर्व दिशा के मुख को अरुणे न अपनी ललाई से अरुणिमा से लाल कर दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते जैसे दीर्घ दर्शन दीर्घ काले में दर्शनम जैसे सह प्रिय, दीर्घ काल तक जिसका दर्शन नहीं हुआ है ऐसा प्रिय पति जब अपनी पत्नी के पास आता है बहुत दिन प्रदेश में रह करके, तो वह शोक से ग्रस्त अपनी प्रिया के मुख का मार्जन करता है और उस पर कुमकुम का लेप करता है, कुमकुम का लेप करता है उसे प्रसन्न करने के लिए। जैसे दीर्घ दर्शन प्रिय प्रियाया, बहुत काल प्रदेश में रहने के बाद घर लौटा हुआ प्रिय अपनी प्रिया के मुख पर कुमकुम लगाता है, उसका मुख लाल हो जाता है। इस तरह से चंद्रमा मानो पूर्व दिशा के मुख को लाल कर रहा था। जब चंद्रमा उगता है तो उस समय अरुणिमा रहती है उसमें, देखा गया। सूर्य भी उगता है तो उगते समय लाल लाल किरणें रहती। प्राची दिशा वास्तव में इंद्र की पत्नी मानी गई है, पत्नी नहीं है परंतु प्राची दिशा का दिग्पाल इंद्र है। प्राची मतलब पूर्व, पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र माने जाते हैं। तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े ही साहित्यिक ढंग से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण भी यहां बाह्य दृष्टि से देखने पर लग रहा है कि दूसरे की स्त्रियों के साथ विहार करेंगे। तो उधर पूर्व दिशा में चंद्रमा भी दूसरे की पत्नी के मुख को लाल कर रहा है, ये वर्णन कर रहे हैं। ये सब साहित्य में बातें दी गई है, किस शब्द को किस स्थिति में कहा जा रहा है। तो भगवान के पूर्वज चंद्रमा ये भी दूसरे के स्त्री का मुख लाल कर रहे हैं, यदि वहां पर पति पत्नी का कोई स्वरूप कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, परंतु फिर भी जब लोकपाल हैं पूर्व दिशा के तो उनको कहा जाएगा कि पति हैं इंद्र, लेकिन इंद्र के पत्नी के मुख को चंद्रमा लाल कर रहे हैं। कैसे? करई, करई मतलब अपने किरणों से, और अरुणिमा से लाल किए। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, वास्तव में श्रृंगार रस के उपयुक्त बिल्कुल उदाहरण दे रहे हैं। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन, दीर्घ काल के बाद जिस प्रिय का दर्शन हुआ है, दीर्घ काले न प्रस्य गृहागतम प्रियम, बहुत काल के बाद आए हुए अपने प्रिय बहुत काल के बाद आया हुआ प्रिय अपने प्रिया के मुख पर कुमकुम लेपता है, इस तरह से चंद्रमा ने पूर्व दिशा का मुख लाल कर दिया। इसका अर्थ है कि भगवान के संकल्प करने पर चंद्रोदय हुआ नया नया बिल्कुल। जब चंद्रमा उगता है तो उसकी लाल लाल किरणें पड़ती हैं, तो पूर्व दिशा का मुख लाल हो गया। यह भी भगवान श्री कृष्ण के रास विहार में एक उद्दीपन सामग्री है। अतः सुखदेव गोस्वामी बड़ी मस्ती के साथ वर्णन कर रहे हैं तो कैसा मुख है आगे भी वर्णन किए हैं। तदोडु राजा है, ये शब्द ध्यान देने की बात है। जब भगवान ने इच्छा किया तब चंद्रमा उगा, और पहले वर्णन किया गया था कि भगवान ने उन रात्रियों को देखा, देख करके इच्छा किया, तो संगति नहीं बैठती, क्योंकि चंद्रमा की रात, चंद्रमा पूर्ण है तो पूर्णिमा की रात्रि है, आश्विन है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, तो चंद्रोदय होगा तब तो रात्रि भगवान देखेंगे। चंद्रोदय के पहले तो रात्रि थी ही नहीं, पूर्णिमा के दिन तो उधर सूर्य का डूबना और उधर चंद्र का उगना ही, दोनों एक साथ लगभग हो जाता है। ये कैसे कह रहे हैं कि रात्रियों को भगवान ने देखा? रात्रियों को देखा इसी के द्वारा सिद्ध हुआ कि भगवान के द्वारा रची हुई रात्रियों को भगवान ने देखा, अर्थात तो पहले अनुमान कर लिए, सब कुछ देख लिए कि ऐसी ऐसी रात्रियां होंगी, ये होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, सब कुछ, और इसके बाद चंद्रमा को उदित होने का संकेत किया। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्शन में हो रहा है, और कुछ भी प्राकृत नहीं है, न प्राकृत हवा है, न प्राकृत भूमि है, न जल है, कुछ भी प्राकृत नहीं है, सब कुछ दिव्य है, चिन्मय है, परब्रह्म परम पुरुष के खेलने का स्थान, वो काल, उद्दीपन सामग्री, सब कुछ दिव्य है, और सब कुछ श्री कृष्ण स्वरूप है वास्तव में। अतः साधक का कर्तव्य है कि वह प्राकृत धरातल से अपने मन को बिल्कुल उठा करके अप्राकृत जगत में ले जाए। ये साधक ही कर सकते, संसारिक जीव ऐसा कर नहीं पाएंगे। जो लोग भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, दर्शन करते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, वही समर्थ है अपने मन को प्रकृति से ऊपर उठाने में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे अव्यभिचारिणी भक्ति योग में रहता है, अव्यभिचारी भक्ति योग में रहता है, सब गुणान वो अतिवर्त गुणों को लांघ जाता है। तो जिसका चित्त, जिसका मन प्रकृति के गुणों को लांघ चुका है, वही व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूप से रासलीला को आत्मसात कर सकता है, वो समा सकता है। पर जो कुछ भी हो, रासलीला के श्रवण कीर्तन द्वारा यह संभव है, साधन भी यही है उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी यहां पर चंद्रोदय का वर्णन किए, और अब भगवान श्री कृष्ण के मन में जो भाव उदित हो रहा है उसका वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा कुमुदवंतमखंड मंडलम रमान नाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। अखंड मंडलम रमान नाभम नव कुंकुमारुणम कुमुदवंतम दृष्ट्वा, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देखा ध्यान से। ऐसे लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण गोचारण करके आ चुके थे और स्नान किए, स्नान करके अपना श्रृंगार किए, माता यशोदा ने कराया और कुछ खा पी लिए, भोजन किए, तो उन्होंने चंद्रशाला से अर्थात खिड़की से देखा चंद्रोदय, ऐसा वर्णन करते हैं। चंद्रोदय भगवान ने देखा खिड़की द्वारा, तो उस समय मां से तुरंत ही आज्ञा लेकर के कि मैं जा रहा हूं अपने सखाओं के साथ गोष्ठी करने और सब करने, रोज का नियम था। इसके बाद वो वन में निकल गए अलक्षित गति से, क्योंकि वो प्रतिदिन का भगवान का रूटीन है, उनकी अद्भुत शक्ति है। वो एक स्वरूप से तो वहां भी रहते हैं, यशोदा जी के साथ भी रहते हैं, सखाओं के साथ भी रहते हैं, वो जोगेश्वरेश्वर हैं। वो तो कोई भी दूसरा रूप बना करके और फिर जा सकते हैं। वो वन में गए, उन दत्रियों को देखा, चंद्रोदय को देखा, और तब जगौ कलम दान दृश्य मनोहर, कलम जगौ, भगवान ने गाया, वेणुना इति शेष, वेणु पर गाया, बांसुरी पर गाया। यहां बांसुरी का वर्णन नहीं किया जा रहा है, लेकिन आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेणु गीत को सुन करके आई थी। अतः यहां पर अपने आप समझ लेना चाहिए कि भगवान ने बांसुरी पर गाया। कैसा चंद्रमा देखा? अखंड मंडलम। चंद्रमा की पहली विशेषता श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखंड मंडलम, न खंडम मंडलम जैसे तम अखंड मंडलम। चंद्रमा का मंडल खंडित नहीं था, यह केवल एक दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। मंडल खंडित नहीं होता, अखंड मंडल मतलब पूर्णिमा के चांद को देखा पूरा पूरा। रमाननाभम अथवा अखंड मंडलम का एक अर्थ है कि यह चंद्रमा नहीं था, क्योंकि इसमें खंड मंडल है। खंड मंडल का अर्थ है कि बीच में काला काला धब्बा रहता है, इसमें वो भी एक खंड ही माना जाएगा। मंडल में खंड है, काई है, काला है, कुछ है, तो ये नहीं उगा था, इसके द्वारा सिद्ध हुआ। वो भगवान की इच्छा शक्ति से चंद्रमा उदित हुआ था, वो चिन्मय चंद्रमा, दिव्य चंद्रमा। रमा ननाभम, रमा लक्ष्मी, आनन वदन, आभम कांति। चंद्रमा कितना सुंदर था, भगवान ने देखा कि लक्ष्मी के मुख के समान सुंदर। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा रानी के मुख का स्मरण आने लगा। यह रमा का अर्थ है रमयती इति रमा, जो श्री कृष्ण को सुख दे, सेवा करे, रमा दे, आनंद में करे, उसको रमा कहते। तो रमा का अर्थ है राधा रानी। वास्तव में यहां अर्थ यही समीचीन है, रमा आनंद आभम, रमा के श्री राधा रानी के मुख के समान सुंदर आभा को देखा। वो इतना सुंदर चंद्रमा उगा था कि भगवान को राधा रानी के मुख का स्मरण हो रहा है, हाँ ये राधा रानी के मुख के समान सुंदर, उद्दीपन का काम कर रहा था। नवकुम कुमारुणम, और नए कुमकुम की तरह अरुण था, नया कुमकुम, बिल्कुल फ्रेश पीसा हुआ कुमकुम जैसे लाल लाल होता है, ऐसे चंद्रमा बिल्कुल लाल उदित हुआ भगवान ने देखा। नवकुम कुमारुणम और वनम च, एक तो चंद्रोदय देखा, चंद्रमा को इस तरह से देखा, और वन को देखा। वनम कथम भूतम तत् कोमल गोभिरंजितम, चंद्रमा की मृदु किरणों के द्वारा अनुरंजित, बहुत सुंदर। जब चंद्रमा लाल उदित हुए तो वृंदावन के वृक्ष या जमुना जी या पुलेन या भूमि जो भी थे सब थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए कहते तत् कोमल गोभी अंजितम, और कोमल किरण का एक अर्थ यह है कि शुरू शुरू में चंद्रमा की किरणों में अंधकार भगाने की उतनी क्षमता नहीं थी। शुरू में जब चंद्रोदय होता है तो कोमल किरण रहती है, कोमल का अर्थ है पूर्ण सामर्थ्य से युक्त नहीं, अर्थात पूर्ण उजाला देने में समर्थ नहीं, थोड़ा कम उजाला दे रहा है, इसलिए उसको कोमल कहते हैं। तो कोमल का अर्थ मृदु भी हुआ, और ऐसे चंद्रमा की किरणें तो कभी भी कठोर नहीं होती है, पूर्ण विकसित हो आकाश के मध्य भाग में फिर भी तो सूर्य जैसा दाहक नहीं होता है, उसकी किरणें दाह उत्पन्न नहीं करती, हमेशा कोमल रहती है। पर यहां पर कोमल किरण तत् कोमल गो भी गो का अर्थ किरण, अपनी कोमल किरणों से चंद्रमा वृंदावन को अनुरंजित कर दिया था। लाल लाल किरणों के कारण वृंदावन का सब कुछ लाल जैसा दिखाई पड़ रहा था। इसको हम सहज समझ सकते हैं। आजकल की जो लाइटिंग की जाती है स्टेज पर, कहीं कहीं पता नहीं कुछ सब लोगों ने देखा है नहीं, देखे तो होंगे ही, किस तरह से फोकसिंग करते हैं, लाइट देते हैं, कभी ग्रीन हो जाता है, कभी बिल्कुल ब्राइट, कभी येलो, कभी रेड, कभी कुछ ऐसे। तो अगर रेड लाइट पड़ती है तो उस पर जितने भी रंगमंच पर रहने वाले लोग हैं, जो बस्तियां हैं, सब रेडिश दिखाई देते हैं, है ना, लाइट के अनुसार। तो वृंदावन चंद्रमा के लाल लाल किरणों से लाल लाल जैसा दिखाई पड़ने लगा। इसको अंजितम कहते हैं, अंजित तत्कोमल गोभी अंजित, अंजित का अर्थ अलंकृत, बहुत सुंदर मंडित, चंद्रमा की किरणों के द्वारा वृंदावन बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे वन को, चंद्रोदय को और वृंदावन को देखकर जगल कलम वाम दृशान मनोहरम, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी पर गीत गाया। किसके लिए, क्यों गीत गाया? वाम दृशान मनोहरम, जो वाम दृक, वाम का अर्थ होता है टेढ़ा या सुंदर, जिनके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं या जो टेढ़ नजर से देखती हैं, स्त्रियों के लिए कहा जाता है वाम दृशान, जिनकी दृष्टि, जिनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आंखों से उपलक्षण से सारा शरीर बहुत सुंदर है, ऐसी ब्रज सुंदरियों के मनोहरम, मन को हरने वाला गीत गाया है। और कलम, कलम का अर्थ है कि मधुर और अस्पष्ट, साफ साफ नहीं गीत गाया, प्रत्येक गोपी को ऐसा हल्का सुनाई पड़ा कि प्रियतम हमारा नाम ले रहे हैं, गा रहे हैं, गा करके कुछ और बुला रहे थे, आवाहन कर रहे थे, और नाम सबको ऐसा आ रहा था, साफ शब्द नहीं बोल रहे थे, पर प्रत्येक गोपी को यही भाव हुआ कि हमारा नाम कुछ बोल रहे हैं, प्रियतम नाम बोल रहे हैं। इसको कहते हैं वाम दृशम मनोहरम, सुंदर नेत्र वाली गोपियों के मन को हरने वाला गीत गाया। भगवान की ऐसी अचिंत व्यवस्था थी कि उस गीत को जो वृंदावन में गा रहे हैं बंसी भट्ट के पास, उस गीत को गोपियों के अतिरिक्त और किसी जीव ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, यहां तक उनके पास मयूर आदि थे या हरिण आदि थे या वन में रहने वाले जितने मनुष्य आदि, वे भी नहीं सुने, फिर ब्रज में गोप आदि कैसे सुन सकते थे। यह भगवान की अद्भुत व्यवस्था है, जिसको चाहते हैं कि ये सुने वही सुनेगा, दूसरा नहीं सुने। और यहीं पर देखते ही हैं, मोबाइल में लोग बात कर लेते हैं, बाहर वाले कुछ सुनते ही नहीं है। जब मनुष्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है तो भगवान तो अब कहां से ट्रांसमिटेड कर रहे हैं, वहां बंसी बट से बोल रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वो शब्द केवल उनकी प्रियाओं को सुनाई दिया और किसी को नहीं, वे यही चाहते थे। वाम दृशम मनोहरम, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के मन को हरने वाला गीत गाए, मतलब केवल उन्होंने सुना और किसी ने नहीं सुना, यह भगवान की विशेषता है। और यहां पर खुले में कोई गीत गावे और सोचे कि ये आदमी सुने वो ना सुने, संभव नहीं है, है ना। खुला में गीत गाए तो बंसीबट के निकट, बंसीबट के नीचे भगवान गा रहे थे कलम गीतम। कभी कभी वैष्णव आचार्य जन सोचते हैं क्या गीत गाए भगवान, ओहो उस समय कोई रिकॉर्डर होता है और रिकॉर्डिंग किया गया होता है, कितना सुंदर, कितना मधुर गा रहे होंगे। और वह उस गीत का एक ही तात्पर्य था, अपनी प्रियाओं को बुलाना, ब्रज वन में बुलाना, इसी के लिए गा रहे थे, किसी दूती को नहीं भेजे, किसी व्यक्ति को नहीं भेजे, गा रहे। इसीलिए बंसी प्रिय सखी, बंसी ही दूती का काम करती है भगवान की लीला में, बांसुरी ही बुला लेते, जहां से जिसको बुलाना हो बुला लेती, ऐसा मधुर गीत गाया भगवान ने, अद्भुत था वो गीत। अब तो भक्तों के मानसिक चिंतन के लिए सुखदेव गोस्वामी छोड़ रहे हैं कि आप विचार कीजिए कितना मधुर गीत होगा, क्या होगा। कलम, कल का अर्थ ऐसे होता है मधुर, कलम मधुरम, परंतु यह कलम का अर्थ है भगवान जो बांसुरी पर गीत गा रहे थे आवाज कम निकल रही थी, साफ साफ शब्द नहीं निकल रहा था लेकिन बहुत मधुर ट्यूनिंग था, बहुत मधुर बहुत मधुर। ऐसा गोपियों को जब वो सुनाई पड़ा तो ऐसे वे चल दी जैसे लगता था कि उनको कोई रस्सी से बांध करके खींच रहा, इतना मोहन मंत्र था उस बांसुरी के तान में, तान ऐसी बजाते हैं। एक बार तुलसीदास जी ने पूछा नंददास जी से, नंददास जी उनके भाई लगते थे या गुरु भाई, तो शुरू में शायद उनके वंश के ही थे, तो तुलसीदास जी ने कहा उनसे एक बार कि भगवान राम में क्या कमी हुई कि आप वृंदावन बिहारी के दीवाने हो गए, तो क्या आप इस क्षेत्र के हैं अयोध्या के तरफ के चित्रकूट के तरफ के, क्या जरूरत थी बंसी वाले की तरफ जाने की। तो उन्होंने दोहा लिखा है, कहा कमी रघुनाथ में छाड़ दियो जो बाण, आप पहले तो राम के भक्त थे तो राम में क्या कमी देखे कि आप अभी छोड़ दिए राम को और कृष्ण को ग्रहण कर लिए। तो उस दोहा की पूर्ति की नंददास जी ने, तुलसीदास जी ने कहा कि कहा कमी रघुनाथ में छाड़ दियो जो बाण, बाण मने आदत, राम भक्ति की आदत छोड़ दी। तो नंददास जी पूरा करते हैं, मन बै रागी हो गयो सुन बंसी की तान, हम क्या करें, और इनके पास तो वही धनुष बाण है उसमें कोई आवाज है नहीं, बांसुरी की तान सुनकर मन बैरागी हो गया, अब हम क्या करें, मतलब भाग गया वृंदावन लेकर खींच करके आया। वेणु माधुरी, रूप गोस्वामी पाद जी भगवान के जब माधुर्य का वर्णन करते हैं तो उसमें एक वेणु माधुरी अद्भुत, और यह वेणु न भगवान राम के पास है न विष्णु भगवान के पास है, एक गदा धनुष आदि है उसी को भांजते रहे जो भी करना है करें, लेकिन गीत तो गाने वाले वास्तव में श्याम सुंदर हैं, अद्भुत गीत, अद्भुत नृत्य, अद्भुत बाजा, बांसुरी ने क्या क्या कर दिया है, इसी पर हजारों लाखों कविताएं बांसुरी ने ये किया ये किया वो किया ये किया ये किया। भगवान के इस रास विहार में वेणुवादन, वेणु एक मुख्य अंग है भगवान का सहायक, जगो कलम बांदेशा मनोहरम, बहुत सुंदर गाया। और अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजास्त्रियो कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सजात कांतो जलोलकुंडलः। सुप्रसिद्ध स्वामी जी लिखते, अन्यतु तद गीतम न श्रुतवन्तः किंतु तेना ताए व चकृष्टा, अन्य लोग कोई भी व्यक्ति इस गीत को नहीं सुन पाए, भगवान की प्रेयसियां श्री गोपियां ही केवल उस गीत को सुनी, और ऐसा नहीं कि सारे स्त्रियों ने सुना, नहीं, स्त्रियों में भी सबने नहीं सुना, जसोदा ने नहीं सुना और किसी ने नहीं सुना, रोहिणी ने नहीं सुना और जो मातृभाव वाली गोपियां थी नहीं सुनी, केवल भगवान की प्रेयसियों ने सुना बस। और उस वेणु गीत के द्वारा वे किस तरह आकृष्ट हुई इसका वर्णन करते हैं, तत् अनंग वर्धनम गीतम निशम्य कृष्ण गृहीत मानसः ब्रजस्त्रिय अनन्यम अलक्षितोद्यमः जवलोल कुंडलः जत्र सह कांतः तत्र अजग्म जवलोल कुंडलः। तद गीतम निशम्य, उस गीत को सुनकर भगवत प्रेयसियां श्री गोपियां जहां प्रियतम श्याम सुंदर थे वहां आ गए, आजग्मु। उस गीत के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तद अनंग वर्धनम गीतम, अनंग को बढ़ाने वाला गीत था। शास्त्र कहता है कि अनंग का अर्थ है भगवत विषयक काम, भगवत विषयक काम इसको अनंग कहा गया। अनंग का एक अर्थ होता है पूर्ण, और किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा होती है, किसी भी प्रकार की जो इच्छा होती है, यदि भगवान के प्रति वो इच्छा की जाए तो उसे अनंग कहा गया है। वो पूर्ण इच्छा है, पूर्ण काम है, पूर्ण काम। यदि किसी को भगवान को छूने की इच्छा हो रही है, या भगवान से बात करने की इच्छा हो रही है, भगवान को खिलाने की इच्छा हो रही है, या भगवान के द्वारा सुख पाने की इच्छा हो रही है, या उनको सुखी करने की इच्छा हो रही है, तो इसको शास्त्र में अनंग कहा गया है। वैसे यथाश्रुत अर्थ अगर कोई करे तो अनंग का अर्थ होता है काम, परंतु यहां पर गोपियों के लिए इस निकृष्ट शब्द का प्रयोग करना ही बहुत बड़ा अपराध होगा। सुखदेव गोस्वामी कैसे भूल कर सकते थे। तो अनंग वर्धनम का अर्थ है कृष्ण रति वर्धक, कृष्ण में प्रीति बढ़ाने वाला गीत था। भगवान के गीत में वह महामोहन था, वह उच्चाटन मंत्र था जो गोपियों में वर्तमान कृष्ण प्रेम को धधका दिया और अधिक धधका दिया। ठीक उस तरह से एक टीकाकार कहते हैं जैसे आग कहीं है, वर्तमान है और ईंधन भी है, लेकिन मुख से जब फूंकते हैं उसको, कभी कभी लोग बांस से फूंकते हैं, बांस रहता है, उससे फूंकते हैं तो आग बढ़ जाती, धधक जाती है। मानो भगवान कृष्ण ने इस तरह से किया। गोपियों में तो पहले से ही कृष्ण का राग है, कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम है, काम है। प्रेमय गोप रामायण कामय तेगमत प्रथा, गोपियों में जो श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है, कृष्ण को सुख देने की लालसा है, इसी को शास्त्रकारों ने काम कहा है। गोपियों के संबंध में अगर गोपी के साथ किसी काम शब्द का प्रयोग किया जाए, या मनोज शब्द, मनसी कोई शब्द, तो उसका अर्थ प्रेम समझना चाहिए। कुछ रिजर्व अर्थ होते हैं किसी किसी क्षेत्र में, तो काम का अर्थ ये लस्ट नहीं होगा इस संसार में जो समझा जाता है, ऐसा नहीं होगा। काम का अर्थ है, अनंग का अर्थ है कृष्ण विषयक प्रेम, लालसा जो गोपियों में पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन बांसुरी के गीत को सुनने के बाद कोटि कोटि गुना बढ़ गई वो लालसा भगवान के साथ होने के लिए, उनको सुखी करने के लिए। इसको अनंग वर्धनम कहते हैं। सब में है, जीव का श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है, लेकिन इस मायाबद्ध दशा में वो सो गया है, बिल्कुल डॉर्मेंट। उसी को श्रवण कीर्तन या भक्ति के अन्य अंगों द्वारा जगाया जाता है, जगाने का प्रयास करना चाहिए। यह शब्द बहुत प्रेरणा देने वाला है कि अनंग वर्धनम, भगवान कृष्ण के प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। वर्धनम का अर्थ है उसको प्रकट करना, वर्धनम उत्तेजित करना। हम लोग भी भगवान के भक्त बने हैं, भक्ति कर रहे, चाहते हैं कि हमारा प्रेम बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए। कभी कभी कोई कोई भक्त कहते हैं हम लोग इतना दिन से जॉब कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि जहां थे वहीं हैं, क्या करें। वास्तव में प्रेम दान तो श्री कृष्ण कर सकते हैं। बिना साधना के, बिना किसी विधि के, योग के, भगवान चाहे तो प्रेम एक सेकंड में भर सकते। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, देखा गया कि पापी तापी जीव, यहां तक कि मनुष्येतर प्राणी, हाथी और बाघ, हरिण, सर्प, इन सबको भी वे केवल एक बार बोल करके ही प्रेम दान दे दिए। आश्चर्य है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। हमारे प्रेम को बढ़ाना ये श्रीकृष्ण के हाथ में है। श्री कृष्ण जब देखते हैं कि यह व्यक्ति भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन आदि कर रहा है, तो प्रसन्न होकर के भीतर यहीं पर स्विच है उसको ऑन करते हैं। वो तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ। हम बहुत बहुत साधना करके भी जिस प्रेम को नहीं पा सकते हैं, भगवान चाहे तो एक सेकंड में प्रवृत्त कर सकते हैं, परंतु भगवान को खुश करने वाला काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो स्विच ऑफ ही रखेंगे और संसार की तरफ राग रहेगा, भगवान के रूप आदि के प्रति कोई लगाव नहीं हो पाएगा। मान लीजिए किसी के पास टेलीविजन है और हमेशा ऑफ ही रखा है तो क्या रूप को पकड़ेगा वो? अगर हमेशा ऑफ है तो बस टेलीविजन का स्क्रीन जो है निराकार के अलावा किसकी पूजा करेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं उसको। ऐसे ही कुछ मूढ़ों का जो चित्त है वास्तव में वो ऑफ है ईश्वर द्वारा, वो निराकार को ही समझेंगे, भगवान के दिव्य वेणु वादन स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत कठिन है समझ पाना। कठिन इसलिए है कि परमात्मा को भगवान को खुश करने वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ऐसे लिखा गया है भागवत में। प्रविष्ट कर्ण रंध्र कान के रास्ते से प्रवेश करके और हृदय के भाव कमल को शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते, विकसित कर देते हैं। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तदनंग वर्धनम, गोपियों के अनंग को कृष्ण विषयक प्रीति को धधकाने वाला वह गीत था, उसको सुन करके उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया, और अधिक बढ़ गया। गोपियों में तो निहिस्सी में प्रेम पहले से ही था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो बढ़ाना नहीं है गोपियों के प्रेम को, वो नित्य सिद्ध है और बढ़ा हुआ है। तथापि उस समय उनका धैर्य, लोक लज्जा और घर के काम धंधा आदि का ध्यान भी ध्वस्त हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, अब वहां रहने योग्य नहीं रह पाई। यह अर्थ है पूर्ण एकाग्र कर लिया चित्त को वेणु वादन ने, बांसुरी के स्वर ने, और वे इस तरह से भाग आए। आजग्मु कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण ने, प्रियतम श्याम सुंदर ने तो पहले से ही उनके चित्त को पकड़ लिया था। कृष्ण गृहीत मानसा का एक और भी विशेष अर्थ है कि वास्तव में गोपियों ने श्री कृष्ण में चित्त लगाने का प्रयास कभी नहीं किया। क्या कोई लगाने का प्रयास करे जिसके चित्त को पहले से ही श्याम सुंदर पकड़ लिए हैं, तो अब लगाना क्या बाकी है। पकड़ लिए थे अर्थात गोपियों का मन भगवान के मुस्कान में, चाल में, वनमाला में, बांसुरी के गीत में, मुस्कान में, उनकी विविध लीलाओं में पहले से ही आसक्त हो गया था। उनका मन घर में कभी नहीं था, पति आदि की सेवा में उनका मन बिल्कुल नहीं था, किसी दूसरे का बच्चा है उसकी भी सेवा करो, उसको दूध पिलाओ आदि, इन सब में कभी मन नहीं था, केवल शरीर से कर रही थी। विवाह हुआ था, घर में पति थे और स्वजन थे, तो स्वाभाविक करना था परवश, तो करती थी, लेकिन मन कभी नहीं लगा, एक सेकंड भी मन नहीं था घर में। उनका मन तो अपने प्रियतम के पास था, श्याम सुंदर के पास था। कृष्ण गृहीत मानस है, कृष्ण के सौंदर्य ने, बांसुरी के गीत ने, लीलाओं ने उनके मन को पूरा पकड़ लिया था। ऐसा सौभाग्य उनको मिला था, भगवान वहीं ब्रज में रह रहे थे जिनकी कथा सुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और कथा सुनकर के सोचते हैं भगवान में मांग लगे, प्रीति बढ़े, वही भगवान जहां पर रोज घूमते रहते थे, मुस्कुरा करके किसी गोपी पर देखना, संकेत करना, नाचना, गाना, बोलना, और उनका मन कैसे संसार में रह सकता था। भगवान तो परम आकर्षण की निधि है, सारा आकर्षण उनमें है, तो ऐसे प्रभु वहीं रोज लीला कर रहे थे और आत्मीयता पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, तो पूरा मन आसक्त था गोपियों का, तो पहले से ही था, लेकिन जब आह्वान सुना, अपना नाम सुना बांसुरी पर, तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब श्याम सुंदर हमें बुलाएंगे। जिस दिन चीर हरण हुआ था उसी दिन गोपियां अपने घर नहीं लौट रही थी। भगवान उनके चीर को लौटा करके प्रसादी बना करके दिए और वस्त्र पहन करके अब घर नहीं जाना चाहती थी। कभी मन में कल्पना भी नहीं आ रही थी कि घर जाना है, सोच ही नहीं रही थी। भगवान उनको कहे, जाता बला ब्रजम सिद्धा मयमा रम सथक छपा, हे मेरी प्रियाओं, हे अबलाओं, तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ। लेकिन गोपियां इसके लिए नहीं थी, कभी उन्होंने नहीं सोचा कि घर जाना आवश्यक है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम आज लौट जाओ, आगामी शरद काल की रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। उसी उन्हीं रात्रियों का संकेत सुखदेव गोस्वामी ताह शब्द से कर रहे हैं। ताह रात्रि जो प्रतिश्रुति थी भगवान के द्वारा, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि आगामी शरद काल की रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा, तुम जाओ घर लौट जाओ। तो भगवान की आज्ञा मान करके वो गोपियां लौट गई थी, गोप कुमारियां लौट गई थी, लेकिन मन कभी भी उनका घर में नहीं था। तो आज जब उन्होंने बांसुरी पर गीत सुना, कृष्ण का निमंत्रण सुना, आह्वान साथ नाम बोल रहे थे, इसको सुन करके वो तुरंत ही चल दी कृष्ण के पास। अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, यहां तक कि बांसुरी के उस सम्मोहक गीत में आविष्ट होकर के उन्हें यह भी ध्यान नहीं था किसी दूसरे गोपी को कहना चाहिए कि चलो चलो प्रियतम बुला रहे हैं। इतना व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर बुला रहे थे कि जिन ही सुनी तेनी चल दी। यहां तक कि उस दिन ललिता जी को भी ये ध्यान नहीं आया कि राधा रानी को लेकर के चलना चाहिए। बांसुरी के गीत में इतना मोहन था, इतना आकर्षण था कि ये सब युद्ध भेद आदि और उसके साथ चलो, उसके साथ चलो, उसको कहो, किसी को नहीं, ये विचार ही नहीं आया कहने का, ये साथ में चलना चाहिए। प्रायः पहले गोपियां जब चलती थी प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने तो अपना अपना युद्ध होता था, जैसे चंद्रावली जी का युद्ध है, राधा रानी का युद्ध है, तो अपने अपने युद्ध में प्रिया जी को संभालते हुए उनका अभिसार करना और उनको श्याम सुंदर से मिलाने की चेष्टा करना ले चलती थी। लेकिन आज ये दशा नहीं रही। अनुन्यम अलक्षित उद्यमा, उद्यम का अर्थ है कि वन गमन, ब्रज छोड़ करके, घर छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके चली तो चली, यस ध्यान ही नहीं आया कि हम दूसरे को कह दें हम कहां जा रही हैं, ये जा रही वो जा रही, सब लगता था किसी मोहक मंत्र के द्वारा पकड़ी हुई, उच्चाटन मंत्र द्वारा वो चली जा रही, ये ध्यान नहीं रहा। ये है बांसुरी के गीत का महाप्रभाव। कहां गई? अजगमुख जवलोल कुंडला, इतना जोर से चल रही थी, अलग अलग। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने मनह नेत्र से गोपियों के ब्रज से वन में आने की लीला को देख रहे हैं। ऐसा संभव है कि हो सकता है कि 10 गोपी एक साथ चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे को ध्यान नहीं है को मेरे साथ चल रही है और न बातचीत कर रही है। उसका मन तो प्रियतम के मुख से निःसृत बांसुरी के गीत पर है और गीत सुनती जा रही है, खिंचती हुई चली जा रही है। कोई ध्यान नहीं कि मेरे साथ ललिता चल रही है, विशाखा चल रही है, चंद्रावली चल रही है, या सैब या श्यामला कौन चल रही है, इसका कोई ध्यान नहीं। सब अकेले अकेले चल रहे हैं, उन्मत्त की तरह बिल्कुल। अनुन्यम अलक्षित उद्यमा से उनके उस आवेश का वर्णन किया जा रहा है, तो गीत को लक्ष्य करके चली जा रही है और दिग्भ्रम भी नहीं हुआ। दिग्भ्रम का अर्थ ये नहीं है कि रात्रि में चली है तो कोई इधर चली जाए, कोई उधर भूल जाए। बांसुरी का गीत जिधर से आ रहा था बस चली उधर, चली रास्ता नहीं भूल गए, मानो बांसुरी का गीत ही उनका नेता बनकर ले जा रहा था, ले जा रहा था। तो उस तरह से चली कि उतना तो रस्सी से बांध करके खींचने पर भी कोई नहीं जाएगा, जितना वो जा रही थी बिल्कुल ताम हो रहा था। जिस दिन के, जिस सौभाग्य में दिवस की प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रियतम हमें बुलाएंगे वृंदावन में, और उस दिन हम घर का काम धंधा सब कुछ, पति पुत्र लोक धर्म वेद धर्म सब छोड़ करके, और कब प्रियतम से हम सुंदर को सुखी करेंगी, इस भावना में रहते थे और वही प्रियतम आज बुला रहा है तो घर के काम की पूर्णता पर ध्यान नहीं गया। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए कि जो जो काम कर रही थी वही काम छोड़ करके चल दी। ऐसा नहीं थोड़ा पूरा कर लें, थोड़ा ये कर लें वो कर लें, नहीं। किसी का मन यदि घर के काम में रहे तब तो पूरा करना चाहे ना। पहले से ही मन नहीं था, केवल शरीर लगा था और आज बांसुरी के गीत में तो शरीर को भी खींच लिया। अब किसी काम की पूर्णता पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, दुहंतो भी ययो काशी दोहम हित्वा समुत्सुकः पलोधी सित संयावम अनुद्वास्य परायु। कोई कोई गोपियां गाय दुहवा रही थी, दुहंत। ये सहज जाति कर्म है, गोप वंश की हैं तो गायों के दुहने में सहायता करना, दूध को लेना, बछड़े को खोलना, या कोई कोई गोपी स्वयं ही दूध दुह रही थी। तो जिन ही प्रियतम के मुख से बांसुरी के गीत में अपना नाम सुनाई पड़ा, बस वही दुहना छोड़, दोहन हित्वा, जो दुहा गया, दोहन का अर्थ है दूध, जिसको दुहा गया था कुछ बकेट में या पूरा में बर्तन में जो दूध दुहा गया था, ऐसा नहीं कि दूध को घर पहुंचा दे इसके बाद चले, दूध का मटका या बाल्टी सब वहीं गिरा और चले। और गाय का जो पैर नोया गया था, बांधा गया था गाय का पिछला पैर, वो ऐसे ही रह गई, वो खोलने का ध्यान नहीं गया। यह बछड़ा जो बांधा गया था दूसरे खूंटे में, वो भी वैसे ही रह गया, कुछ भी ध्यान नहीं गया कि बछड़े को खोल दे, गाय को खोल दे, दूध को घर पहुंचा दे, दूध गिरे या मरे कुछ भी हो, इसका तो ध्यान ही नहीं गया। ये है गोपियों का सहज अधिकार, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक महासन्यासी जिसका मन वैराग्य की ज्वाला से प्रदीप्त है, वह व्यक्ति भी घर छोड़ने में हिचक नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देता है नरक समझ करके, पर ब्रह्म की भगवान की खोज करता है किसी तीर्थ में जा करके, तो वह भी लेकिन त्याग जो करता है तो पहले घर के लोगों से मिल लेता है, ये काम ठीक से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब जा करके वो घर छोड़ता है। गोपियों के त्याग की तो कोई समानता है ही नहीं, इस तरह से त्याग किया। दुहन त्यो भी ययुह काशी दोहम हित्वा समुत्सुकः, और दुहना छोड़ करके, दुहा हुआ दूध छोड़ करके, गाय छोड़कर, बछड़ा छोड़ करके, और जो दूह रहे हैं पति उनसे बिना पूछे चल दी। वे सब तो पागल जैसे हो गए कि ये क्या हो गया, वो दौड़े हाथ पकड़ने के लिए, क्या हो गया क्या हो गया, वो कुछ समझ नहीं रहे थे क्योंकि उनको तो बांसुरी का गीत सुनाई नहीं पड़ रहा था। और अकस्मात वो समझी क्या हो गया, मिर्गी आ गई, इसको क्या हो गया, कौन रोग आ गया, हे भगवान हमने तो इतना पूजा किया है देवताओं की, भगवान नारायण की, हमारी पत्नी को क्या हो गया, क्या दशा हो गई। वो तो वो पुकारा अपने सास, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाइयों को, इधर उधर पकड़ो, इधर गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो तो गई श्यामसुंदर के पास, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे, ता वार्ज माणा पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी गोविंदा प्रहृतात्मा न निवर्तन्त मोहिता। वे रोक रहे थे, बाह पकड़ रहे थे, किवाड़ बंद कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, एक तरफ ये रोक रहे उधर गोविंद खींच रहे हैं, तो कौन विजयी होगा बताइए। गोविंदा प्रहृतात्मा, गोविंद जिसको खींच रहे उसको क्या दुनिया मिल करके वो रोक पाएगी। वे बांसुरी के गीत द्वारा खींच रहे थे, ये लोग रोक रहे थे, नहीं रोके, न निवर्तन तो मोहिता, वे कृष्ण पर पूर्ण आसक्त मोहित, नहीं रुकी, नहीं रुकी, नहीं रुकी, कितना ही प्रयास की। तो दुहंतो भी ययु काशी दोहम हित्वा समुत्सुकः, ये समुत्सुकः शब्द प्रत्येक ग्रुप में लगेगा, प्रत्येक गोपी के साथ समुत्सुकः, अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए अतिशय उत्कंठावती, अतिशय लालसावती, और इस आह्वान को पाकर के वे कैसे रुक सकती थी। कभी नहीं रुक सकती। जैसे कोई ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को रोकना चाहे अपने व्यक्तिगत प्रयास से कि समुद्र में न जाए, या गंगा जी की धारा समुद्र में न जाए, उसके प्रयास से क्या होने वाला है। इतना वेग था गोपियों के कृष्ण गमन के प्रति। पयोधिश्रित संयावम अनुद्वाश्य परायु, कोई कोई गोपी दूध को औंट रही थी, उबाल रही थी चूल्हे पर, तो जो भी उबाल रही थी या रबड़ी बना रही थी, जो कुछ भी कर रही थी वो कर रही थी, ध्यान था, वो परिवार की सेवा के लिए कर रही थी, मन नहीं लगता था लेकिन रोज शरीर का काम था करना, कर रही थी। तब तक अपना नाम सुनाई पड़ा बांसुरी में, वहीं छोड़ करके चलूंगी, ऐसा नहीं कि दूध को उतार दे, कड़ाही को नीचे कर दे, नहीं। पय अधिश्रित्य, अधिश्रित्य वो उबल रहा था दूध, गर्म हो रहा था, छोड़कर चल दी। संयावम, और कोई कोई गोपी लच्छी पका रही थी, हलवा पका रही थी, सीरा पका रही थी, ये रोज का उनका काम था, परिवार के लिए करना वो करना वो करना, वो पका रही थी, और बांसुरी के गीत को सुन करके बस वही कलछुल और सब कुछ छोड़ करके। एक व्यक्ति हमसे पूछा एक बार, तो महाराज तो हलवा तो जल गया होगा ना। कहा बाप रे बाप, गोपियां जिसको छोड़ करके जा रहे आप उसके छोह में पड़े हुए, जला हो तो कुछ भी जला, इसको क्या ध्यान करना। इस तरह से छोड़ना चाहिए घर को, बहुत कठोर सत्य है। और कम से कम उतना नहीं छोड़ो तो कम से कम कथा सुनने के लिए तो 7-8 दिन के लिए छोड़ो, है ना। इधर कोई जले या मरे या कुछ भी हो, भगवान के हम लोग हैं ना, तो उनकी बात सुनने के लिए छोड़ ही देना चाहिए। गोपियों ने छोड़ा सदा के लिए, लेकिन हम लोग तो कभी कभी छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण बुला दे बांसुरी में तो उस दिन तो अपने आप ही सब छूट जाएगा, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस तरह से बीच बीच में छोड़कर देखना चाहिए। तो दूध वहीं उफन कर जल गया, ये संयाव हलवा भी वहीं तो जल गया, दूध छोड़कर के चली। परिवेश किंतु स्तब्धित्वा, कोई कोई अपने ससुर को, अपने पति को या अपने घर के अन्य लोगों को भोजन परोस रही थी और बैठे थे खाने के लिए, जितना परोसी थी उतना ही बस छोड़ करके चल गए। ऐसा नहीं कि परोसने का बर्तन हाथ में लेकर वहीं बस बर्तन पटकी पति के सामने और चल गए, कोई ध्यान नहीं। वो तो बिल्कुल मुग्ध हो गए होंगे कि हाय रे भगवान, क्या हो गया। किसी किसी को केवल प्लेट ही मिला था कुछ। चल हाथ से गिरा भात चाहे जो पूरी जो भी हो, खीर खत्म हुआ। गोपियों के इस महात्याग और कृष्ण प्रेम की कल्पना करना भी कठिन, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। परिवेश अंत स्तब्धित्व, परोस रही थी और परोसना छोड़ करके चल रही। परिवेश अंत स्तब्धित्व, पाई अंत शिशुन पय, और कोई कोई गोपियां दूसरे के छोटे छोटे बच्चों को पाई अंत पिला रही थी, गाय का दूध पिला रही थी। पाई अंत कितना सुकोमल, कितना स्नेह का पात्र होता है, छोटा सा बच्चा भूखा है और उसको दूध पिला रही है, गाय का दूध पिला रही है। लेकिन गीत जब सुनाई पड़ा तो ये भी ध्यान नहीं गया कि बच्चा बेचारा रोएगा, घर पे पिया नहीं है, पिला करके जाऊं, नहीं नहीं, बच्चे को वहीं छोड़ करके दूध छोड़ करके चल दे। कोई आदमी सोच सकता है कि अरे इतना कठोर होने की क्या जरूरत है, बच्चे को पिला करके जाती, कौन रोकने वाला था। लेकिन ये गोपियों का स्वरूप और उनका अधिकार सुखदेव गोस्वामी दिखा रहे हैं, ये है उनका स्वरूप और अधिकार, किसी के मन कल्पना से भी बाहर की बात। आजकल के तो समाज से भी कहेंगे ये तो दुराचार है, अनाचार है, बच्चों की सेवा छोड़ करके, माता पिता की सेवा छोड़ करके चल देना, बाप नहीं बाप। हाँ तो आजकल तो दुराचार है ही, क्योंकि छोड़ करके उधर कोई क्लब में चला गया है, कोई स्त्री इधर घूम रही है, उधर ताश खेल रही है, उधर शराब पी रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, सारे अधर्म में लगे। भगवान कृष्ण के लिए अगर छोड़ा जाए तो ये तो जीव की शोभा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी नव विवाहिता पत्नी को केवल 2 साल में छोड़ दिए विष्णुप्रिय, जबकि घर में कोई नहीं था। पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे, माँ विधवा थे, भाई एक थे सन्यासी हो गए, और 8 बहनें पहले जन्म लेकर के मर चुकी थी। बड़ा भाई भी सन्यासी, पिता भी नहीं, माँ विधवा है, पत्नी नवज्योति बिल्कुल। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, तो छोड़ करके उन्होंने जगत को सिखाया कृष्ण के लिए ऐसे छोड़ना चाहिए। यद्यपि कृष्ण लीला में सब कुछ बातें हैं, फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के यहां छोड़ करके सिखाए। हम लोगों के मन में ये बात बैठी रहती है कि नहीं ये सब करना कर्तव्य है, ये है कर्तव्य जरूर है, लेकिन प्राइम कर्तव्य क्या है? हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है कृष्ण से प्रेम करना है, और कृष्ण प्रेम में जो सहायक है तो ग्रहण करना चाहिए, और नहीं सहायक है तो रिजेक्ट करना चाहिए। बस सिद्ध हुआ परिवार आदि इसीलिए है कि भाई परिवार के बिना काम नहीं चलेगा, जीविका नहीं चलेगी और नहीं चलेगी, तो कुछ दिन इनके साथ करो धरो, लेकिन छोड़ने का जब समय आया तो छोड़ देना चाहिए ना। आजकल के लोग ग्रहण जानते हैं, त्याग न जानते ही नहीं, त्याग न जानते ही नहीं। त्याग कितना जरूरी है वो तो सभी अनुभव कर सकते हैं। आप कहीं घर लेने जाइए और आप देखेंगे ठीक है सोने का स्थान है, बेडरूम है, ये किचन है ग्रहण का स्थान, लेकिन त्याग का स्थान नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। टॉयलेट देखेंगे ना इसमें है कि नहीं, कोई आदमी नहीं लेगा। बल्कि भोजन बनाने का स्थान न हो कहीं दूसरी जगह खा लेंगे, लेकिन त्यागने का स्थान तो होना ही चाहिए। इसी तरह से पहले व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कैसे संसार छोड़ा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा, इसको सीखने की जरूरत है। ग्रहण तो सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस त्याग सीखना पड़ता है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर ज्येष्ठमहं प्रपद्ये। भगवान चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या सिखाने आए थे। हम लोग महाभावती गोपियों के प्रेम की बात सुन रहे हैं, किस तरह से प्रियतम के बुलाने पर उन्होंने छोड़ा। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमको कृष्ण नहीं बुला रहे हैं, बुला क्यों नहीं रहे। गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परितेष मामे कम शरणम व्रज, ये बुलाना ही हुआ ना, ये बुलाने से कम थोड़े है। लेकिन हम लोग सांसारिक उत्तरदायित्व में ही लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, कितना अब क्या करे। अगर सज्जन होगा, अगर वास्तव में कृष्ण का प्रेमी होगा तो गीता पढ़ करके उनकी बात मान लेगा, वो ये आग्रह नहीं करेगा कि नहीं वे हम बांसुरी में बुलाएंगे, चाहे डायरेक्ट कहेंगे तब तो करूंगा, नहीं तो हम नहीं कर जाएगा। सब आग्रह नहीं करेगा। हम लोग ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ते हैं, वो सोच रहे थे कि हमारे पिता कौन है, मेरा जन्म कहां से हुआ, क्या हुआ, तब तक ऊपर से तप तप शब्द सुनाई पड़े। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने चित्त को एकाग्र करके तपस्या करना चालू कर दिया। भगवान की बात को माने, इसको श्रद्धा कहते हैं। केवल सुने, बोलने वाला नहीं दिखाई दिया, सुने तप 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 करो, तपस्या करो, तपस्या करो, बहुत सुंदर तप किया दीर्घ काल तक, इसके बाद भगवान का दर्शन हुआ उनको। इसी में भागवत में वर्णन है दूसरे स्कंध, तप किए। तो भगवान का वो सच्चा भक्त है जो भगवान की बात को गीता में भागवत में पढ़ करके मान लेता है, और उसके अनुसार धर्म का आचरण करता है, वर्णाश्रम धर्म या जो भी, और समय पर या विशेष परिस्थिति में वो त्याग भी जानता है कैसे त्याग जाता है। ऐसा नहीं कि केवल जिंदगी भर बस पुत्र परिवार आदि की ही ममता में रह जाए और जीवन विफल हो जाए। यद्यपि गोपियों के अधिकार और की बात तो हम लोगों के लिए वो स्वप्न भी नहीं है, तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कुछ वैसे सीखना चाहिए। उदाहरण, परिवेश अंतस्तित्व पाय अंत सुपर शुष्क संत पति काष्टि गश्मंत्य पास भोजन। कई कई गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, सेवा कर रही थी, चाहे पंखा चल रही हो, चरण दबा रही हो, आपस में बैठी कुछ बात कर रही, लेकिन बांसुरी की आवाज सुनते ही सेवा आदि छोड़ करके चलते। शुष्क संत पति काष्टि अश्मंत्य अपास्य भोजन। और कोई कोई गोपियां भोजन कर रही थी, अश्मंत्य भोजन कर रही थी, लेकिन जिन ही बांसुरी का शब्द सुनाई पड़ा, बस जो कवर खाई थी बस छोड़ करके चलते, हाथ भी नहीं धोई। ये भी ध्यान नहीं गया कि हाथ धो लो या मुंह धो लो, नहीं, कुछ भी नहीं, चल दो। अश्नंत अपाष्ट भोजन निम्पंत अत्र भजंत अजंत कष्ट लोचनी। और कोई कोई गोपियां लेप रही थी अपने शरीर को, श्रृंगार कर रही थी, लेपन का अर्थ अंगराग आदि लगाना, तो जितना लगाई थी वो उतना ही बंद चलती। कार्य की पूर्णता पर ध्यान नहीं गया, अनजनते कष्ट लोचनी। कोई कोई गोपी लेपन कर रही थी घर का, कोई मार्जन कर रही थी घर का, या शरीर पर लेप कर रही थी, शरीर का मार्जन कर रही थी। कोई कोई गोपी अंजन लगा रही थी अभी एक आंख में, और वो भी अधूरा अंजन लगाई थी, लेकिन छोड़कर चलती। थोड़ा भी ध्यान नहीं गया, अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं हो रहा था, समाज का किसी से का स्मरण नहीं हो रहा था। एक आंख में अंजन लगाई थी, वो भी अधूरा, लेकिन छोड़कर कुछ चलते। व्यत्यस्त वस्त्र आभरण, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके वस्त्र और आभरण व्यत्यस्त थे, स्वरूप से और परिवेशन द्वारा भी। कौन वस्त्र कहां पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ध्यान नहीं रहा। जब ही बांसुरी का गीत सुनाई पड़ा तो जो कान में पहनने वाला आभूषण था उसको तुरंत अंगुली में पहन करके चल दी, अंगुली का कान में ऐसे ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में चल दी। व्यत्यस्त वस्त्र आभरण, वस्त्र और आभरण अलंकार सब उल्टा पलटा पहने हुए चल दे। इसमें प्रश्न होता है, क्या किसी ने रोका नहीं उन लोगों को उस रात्रि में निकलते समय? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत रोका गया, क्या आज लोग नहीं रोकेंगे? जरा ध्यान दीजिए, कोई स्त्री घर में रात के समय ऐसे ही अकस्मात बवंडर की तरह निकले तो सब लोग तो चारों तरफ से घेर लगे, क्या हुआ क्या हुआ, इसको बाई आ गई, बात रोग हुआ क्या हुआ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो कोई ओझा के पास दौड़ेगा, कोई डॉक्टर के पास दौड़ेगा, कोई एम्बुलेंस लाएगा, कोई कुछ लाएगा कि नहीं, स्वाभाविक है। तावार्ज माणा पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी गोविंदा पहता मानो न निवर्तन तुम। तावार्ज माणा अपने पिताओं द्वारा, ससुर द्वारा और भाइयों द्वारा, भाई का तात्पर्य अपना खास भाई अथवा पति के भाई, सब रोकने लगे, पति के संबंधी अपने पिता के संबंधी इधर उधर सब रोकने लगे, कहां जा रहे कहां जा रहे, न निवर्तन नहीं लौटी नहीं लौट। कुछ लोग बहुत दूर तक रास्ते में भी आ गए, कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो, क्यों जंगल में जा रही हो, क्या हो गया तुमको, घर पर रहो घर पर रहो, चलो चलो चलो। एक एक को दस दस आदमी पकड़ रहे थे, लेकिन वो अकेले कृष्ण खींच रहे थे, वो बलवान है, नहीं रुकी, न निवर्तन किसी भी हालत में नहीं रुकी। कितना बाह पकड़ना, निहोरा करना, वस्त्र पकड़ना, रुकना, नहीं रुक पाए। यह देखिए बल, स्त्री को अबला कहा जाता है। अगर एक पुरुष कड़ाई से पकड़ ले तो नहीं छुड़ा पाएगी, लेकिन दस दस बीस बीस लोग लग रहे थे रोकने के लिए, पर नहीं रुकी। कृष्ण प्रेम में इतना बल है कि वो नहीं रख पाई। समाज वर्णन करेंगे किस तरह से भगवान उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी तो बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी बात कहेंगे तो महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे, कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझती थी फिर भी वे कैसे कर्मबंधन से मुक्त हो गए। एक बहुत सुंदर सिद्धांत है जिसका निरूपण अगले बैठक में किया जाएगा। हरे कृष्ण।